8 नवंबर दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। व्हाइट हाउस की चाबी पाने के लिए अमेरिका में मतदान शुरू। मतदान के बाद हिलेरी क्लिंटन बोली, ले चलेंगे आपको अमेरिका उस मतदान केंद्र पर जहां डोनाल्ड ट्रंप वोट करने वाले हैं। हमारे साथ होंगे बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय और डेलावेयर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुक्तदर खां, और आपको बताएंगे एक ऐसे गांव के बारे में जहां लड़कियों को स्लेट से पहले पकड़ाई जाती है हॉकी
का रुझान। तो जब पुष्पा प्रधान फर्स्ट टाइम आई थी ना, ये उसी के बाद से हॉकी का रुझान बहुत बहुत है लड़कियों में।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमरेश द्विवेदी से। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुनने के लिए देश के पूर्वी तट पर मतदान जारी है। सभी 50 राज्यों और वॉशिंगटन डीसी के मतदाता 6 अलग अलग टाइम जोन में वोटिंग करेंगे। वर्जीनिया और जॉर्जिया जैसे निर्णायक राज्यों से एग्जिट पोल के नतीजे पश्चिमी तट में मतदान खत्म होने से 4 घंटे पहले आने की संभावना है। डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रमुख निर्णायक राज्यों में अपने प्रचार अभियान की समाप्ति की। मंगलवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 सीटों और सीनेट की 1/3 सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। साथ ही मतदाता 12 राज्यों के गवर्नर के चुनाव के लिए भी वोटिंग कर रहे हैं। जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील के बाद ईरान ने पहला बड़ा ऊर्जा करार किया है। फ्रेंच कंपनी टोटल और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ईरान के साथ $5 अरब के करार पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत खाड़ी क्षेत्र में समुद्र तट से दूर एक बड़े गैस फील्ड का विकास किया जाना है। इस प्रोजेक्ट में टोटल की बड़ी भागीदारी हो सकती है, जिसके बारे में अंतिम फैसला अगले साल की शुरुआत में होगा। ईरान पर एक दशक से ज्यादा समय तक प्रतिबंध लागू थे, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी विश्व शक्तियों के साथ पिछले साल हुई संधि का आर्थिक लाभ उठाना चाहते हैं। इस संधि के तहत ईरान परमाणु गतिविधियों को नियंत्रित करने पर सहमत हुआ था। जर्मन अभियोजकों का कहना है कि पुलिस ने ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर इस्लामिक स्टेट समूह की मदद करने का संदेह है। ये लोग कथित रूप से इस्लामिक स्टेट के लिए सदस्यों की भर्ती कर रहे थे और वित्तीय मदद मुहैया करा रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि इन्हें लोअर सैक्सनी और उत्तर राइन वेस्टफेलिया में छापेमारी के बाद पकड़ा गया। संदिग्धों में एक इराकी उपदेशक हैं जो खुद को अबू वाला बताते हैं। इन पर अनिश्चित समय से नजर रखी जा रही थी। जर्मनी के अटॉर्नी जनरल पीटर फ्रैंक ने जर्मन टीवी को बताया कि गिरफ्तार लोग सीरियाई गृह युद्ध के लिए लड़ाकों की संदिग्ध रूप से भर्ती कर रहे थे। हमें लगता है कि गिरफ्तार किए गए लोग जर्मनी में कट्टरपंथी समूहों के पांव पसारने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग सीरियाई गृह युद्ध में लड़ने के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे। ये थे जर्मनी के अटॉर्नी जनरल पीटर फ्रैंक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी अभिनेत्री मेगन मार्कल उनकी गर्लफ्रेंड हैं। उन्होंने अभिनेत्री मेगन के साथ मीडिया के बर्ताव की भर्त्सना की है। एक बेहद कड़े बयान में प्रिंस हैरी ने कहा है कि वो टीवी स्टार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इस बात से निराश हैं कि वो उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। दोनों के रिश्ते पिछले कुछ हफ्तों से मीडिया की नज़र में हैं। प्रिंस हैरी का कहना है कि मीडिया कवरेज ने सीमाओं का अतिक्रमण किया है। भारत की राजधानी दिल्ली अभी भी प्रदूषण की चादर से ढकी है। स्मॉग से निपटने के लिए प्रशासन ने पुरानी गाड़ियों का लाइसेंस रद्द करना शुरू किया है। इस कदम से करीब 2 लाख गाड़ियों के सड़क से हटने की उम्मीद है, लेकिन पहले किए गए ऐसे प्रयास अप्रभावी रहे थे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। अमेरिका में 45वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। तमाम रिपोर्टों में ट्रंप के मुकाबले हिलेरी क्लिंटन को जीत का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि ट्रंप भी चौंका सकते हैं। अगर हिलेरी चुनाव जीतती हैं तो वो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 150 सालों से मंगलवार को ही अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव करवाए जाते हैं। मंगलवार का दिन इसलिए चुना गया ताकि दूर दराज के इलाकों से आने वाले वोटरों का रविवार का दिन आवाजाही में बर्बाद ना हो और वो उस दिन चर्च जा सकें। बहरहाल कल देर रात अमेरिका में चुनाव प्रचार बंद हो गया। मतदान शुरू होने से पहले न्यूयॉर्क से ब्रजेश उपाध्याय ने ये रिपोर्ट भेजी है।
डेढ़ साल की कड़ी मेहनत के बाद आज ट्रंप और क्लिंटन के लिए इम्तिहान की घड़ी है। हिलरी के लिए नामी गिरामी सितारों ने नाचकर गाकर वोटरों को लुभाया है। देश के फिलहाल सबसे बड़े राजनीतिक स्टार बराक ओबामा ने उनकी पैरवी की है और वोटरों से घर से बाहर निकलने की अपील की है। ट्रंप ने काफी हद तक अपने ही दम पर वोटरों के एक बड़े तबके को अपनी तरफ झुकाया है और हिलरी को ऐसी टक्कर दी है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद थी। लेकिन इस इम्तिहान का फैसला रैलियों में नहीं पोलिंग बूथ्स पर होगा। न्यू जर्सी के इस छोटे से कमरे से पाकिस्तानी मूल के अमरीकी नौजवान लोगों के फोन खड़का रहे हैं। ये सब हिलरी क्लिंटन के साथ हैं और इनकी अगुवाई कर रहे सैम खान का कहना है कि ये जोश मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप के बयानों की वजह से है।
वो तो बात ही कुछ और कर रहा है, वो तो अमेरिका की बात ही ऐसा लग रहा है कि हम अमेरिका में नहीं किसी और कंट्री में आ गए हैं, कहीं और चले गए हैं जहाँ पर हेट्रेड और किलिंग ईच अदर और ये, तो उस लिए हमने सोचा कि इस आवाज़ को उठाना बहुत ज़रूरी है।
ट्रंप कैंपेन का ग्राउंड गेम हिलरी की तरह मजा हुआ नहीं है, लेकिन उनके कट्टर वोटर इतने जोश में हैं कि उन्हें बाहर निकालने में कुछ खास मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और ट्रंप ने कल अपना आखिरी टीवी एड जारी करके अमेरिका को बदल डालने का वादा दोहराया है। कल ही हिलरी ने भी अपना आखिरी टीवी एड जारी करके कहा है कि अमेरिका एकजुट होकर ही आगे बढ़ सकता है।
I believe in our people. I love this country. And I'm convinced our best days are still ahead of us if we reach for them together.
अब फैसला अवाम के हाथों में है।
आज जब अवाम अपना फैसला सुनाएगी तो ट्रंप और हिलरी दोनों ही इसी शहर में होंगे और वो इस फैसले को किस तरह से लेते हैं वो काफ़ी हद तक तय करेगा कि डेढ़ साल की कड़वी बयानबाजी से पैदा हुए जख्म भरेंगे या और गहरे हो जाएंगे। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी न्यूज़, न्यूयॉर्क।
इस बीच मतदान शुरू हुए लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। हिलरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क स्टेट में चपाक्वा में अपना मतदान कर दिया है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि उस चुनाव में मतदान करना कैसा लग रहा है जिसमें आप खुद उम्मीदवार हैं। हिलरी क्लिंटन का जवाब था,
It is the most humbling feeling, Dan, because you know I know how much responsibility.
ये एक बहुत ही विनम्र भावना है क्योंकि आपको पता है इसके साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी जुड़ी हुई है और कितने लोग इस चुनाव के फैसले पर उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर मैं आज के चुनाव में जीतती हूँ तो अपना सर्वश्रेष्ठ इस देश को दूंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के शब्द। आइए सीधे चलते हैं बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास, न्यूयॉर्क में उस मतदान केंद्र के पास जहां वो खड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप वोट डालने वाले हैं। ब्रजेश, क्या ट्रंप वोट डाल चुके हैं?
जी नहीं रेहान, अभी यहाँ जिस तरह से सीक्रेट सर्विस अचानक से सक्रिय हो गई है और हम लोगों को एक जो बैरिकेड के पीछे जाने को कहा जा रहा है उससे लग रहा है कि बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और आपने सही बताया, हिलरी क्लिंटन अपना वोट डाल चुकी हैं, लेकिन यहाँ काफी लंबी कतार लगी हुई है और जो दूसरे बीबीसी संवाददाता देश के दूसरे राज्यों में जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहलाते हैं वहाँ हैं, उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी बता रहे हैं कि सुबह से ही काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई राज्य जहां अर्ली वोटिंग होती है वहां लगभग 4.5 करोड़ लोग अब तक वोट डाल चुके हैं और यहां खेल इसी बात का है कि किसके वोटर ज्यादा से ज्यादा पोलिंग बूथ पर निकल सकें, वही कामयाबी का राज होता है। और यहां एक और बात अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये चुनाव राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और सबकी नजर ट्रंप और हिलरी पर है, लेकिन आज ही जो ऐवाने नुमाइंदगाने माफ कीजिएगा जो कांग्रेस की जो प्रतिनिधि सभा है उसके जो 435 सीट है उसके लिए भी वोटिंग हो रही है, यानी कांग्रेस के सदस्यों के का भी चुनाव हो रहा है जो हर 2 साल पर होता है। इसके अलावा जो बैलेट पेपर, जैसे मेरे हाथ में एक बैलेट पेपर का जो सैंपल है उसमें और भी जो कई स्थानीय मुद्दे होते हैं वो भी उसमें मेंशन होते हैं, जैसे कि मारिवाना यानी कि गांजा को गैर ये कानूनी करार दिया जाए या नहीं। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया के बैलेट पेपर पर तो ये लिखा हुआ है कि जो पोर्न इंडस्ट्री के जो कुछ कायदे कानून हैं उनसे वो लोग सहमत हैं या नहीं, यानी जो जो आपके इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं उन पर भी लोग वोट करते हैं, लेकिन जाहिर है पूरी दुनिया की नजर तो ट्रंप और हिलरी पर ही है।
ये बताएं ब्रजेश, असली टक्कर कहाँ है, वो राज्य जहाँ बिल्कुल जिसे कहा जाए नेक टू नेक मुकाबला है दोनों के बीच?
देखिए अगर दो राज्यों को देखना हो और जिन पर नजर रखनी हो तो वो होंगे फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना। फ्लोरिडा के पास 29 इलेक्टोरल वोट है और अगर ट्रंप के हाथ से वो निकल गया फ्लोरिडा तो समझ लीजिए खेल खत्म हुआ, और इसीलिए उन्होंने पूरा जोर लगाया है वहां पर। और दूसरा है, आमतौर पर काफी वर्षों से डेमोक्रेट के पास जाता रहा था लेकिन 2019 से वो हार गए थे, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कल देर रात 12 बजे जो अपनी आखिरी रैली हिलरी क्लिंटन ने की वो नॉर्थ कैरोलिना में की, तो उसी से आपको अंदाजा लगा आप लगा सकते हैं कि कितनी कड़ी टक्कर है, कितना कड़ा मुकाबला है इन दोनों राज्यों में। आज जो सुबह जो सर्वेक्षण आए हैं उनके मुताबिक अभी भी हिलरी क्लिंटन 3.5 से 4 के बीच में ट्रंप से आगे चल रही हैं, और यहाँ के जानकारों की माने तो ये काफी बड़ा मार्जिन है अगर 2012 के मुकाबले, क्योंकि उसमें ओबामा सिर्फ 1 पॉइंट आगे चल रहे थे मिट रोमनी से और फिर भी वो जीत हासिल कर पाए थे। लेकिन सर्वेक्षणों के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि सिर्फ सर्वेक्षणों पर भरोसा ना करें क्योंकि तो जमीन पर जो हालात हैं वो बदल भी सकते हैं।
अच्छा ब्रजेश ये बताएं,
आप ये नहीं
जी आप अपनी बात पूरी करें पहले,
इसलिए कोई भी जो जानकार है वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम एकदम पुख्ता तौर पर ये ठोस तरीके से ये नहीं कह रहे हैं कि जीत किसी उम्मीदवार की होगी।
ये बताएं कि परिणाम कब आने शुरू होंगे, कब हमें पहली बार ये एक तरह से संकेत मिलेगा कि जीत किस उम्मीदवार की हो रही है।
अगर यहाँ के शाम के 7 जब बजेंगे न्यूयॉर्क में तो वर्जीनिया राज्य का परिणाम आएगा। वर्जीनिया में हिलरी क्लिंटन आगे चल रही थी, एक वक्त था जब ट्रंप कैंपेन ने वहां अपने कार्यालय बंद कर दिए थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में वो फिर से वहां काफी सक्रिय हुए। कल ट्रंप ने वहां रैली की और वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पर प्रदर्शन काफी अच्छा होने वाला है। अगर वर्जीनिया हिलरी क्लिंटन के हाथ से निकलकर ट्रंप के इस पे काबू में चला गया तो समझ लीजिएगा कि हो सकता है बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है इसमें। लेकिन अगर वर्जीनिया हिलरी क्लिंटन के साथ ही रहा तो अंदाजा है कि जिस तरह के सर्वेक्षण आ रहे हैं उन्हीं के अनुरूप परिणाम आएंगे। तो शाम के 7 बजे वर्जीनिया का पहला परिणाम आएगा, 7:30 बजे नॉर्थ कैरोलिना और ओहायो जो फिर से दो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं उसके परिणाम आएंगे, और बीच 9 बजे शाम में जब मिशिगन का रिजल्ट आ जाता है जो आमतौर पर डेमोक्रेट्स हुआ करता था और वहां कड़ी टक्कर हो गई है, और वो अगर किसी तरह से हिलरी क्लिंटन पर फिसल गया तो समझ लीजिए एक लंबी रात के लिए तैयार रहना।
और
लेकिन उसके पहले के जो राज्य जी
सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स शायद कैलिफोर्निया के हैं, और लेकिन उसका परिणाम देर से आएगा।
जी हाँ, लेकिन वो कैलिफोर्निया का और सबसे ज्यादा है, लेकिन आमतौर पर हमेशा वर्षों से वो सिर्फ डेमोक्रेट्स के पास गया है, वहाँ ट्रंप ने बल्कि किसी तरह की कैंपेनिंग तक नहीं की है। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इतना ठोस डेमोक्रेट ये है कि उसका परिणाम वहाँ तो चुनाव 11 बजे मतलब ईस्ट कोस्ट के टाइम के हिसाब से शाम के 11 बजे यानी भारत में सुबह के 9 बज रहे होंगे, और उसके बाद ही सभी परिणामों का रुझान एक तरह से डिक्लेयर होना शुरू हो जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश उपाध्याय आपका। और इस बीच हमारे एक और साथी सलीम रिजवी भी न्यूयॉर्क के एक मतदाता केंद्र पर मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं। सलीम कहां पर हैं आप बताएं, इस समय क्या देख रहे हैं आप?
जी रहन भाई, यहाँ जैक्सन हाइट्स और वुड साइड इलाके में है न्यूयॉर्क के, जो आप जानते हैं कि दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाना जाता है, यहाँ खासी संख्या में रहते हैं दक्षिण एशियाई मूल के लोग। और यहाँ पे सुबह मैं कुछ देर से हूँ तो यहाँ लगातार सुबह से तांता बता रहे हैं लोग लगा हुआ। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि लाइन लगी है इन, ये एक स्कूल में मतदान केंद्र है जे 58 स्ट्रीट है, और यहाँ पर लोगों को भी बड़ा जोश दिख रहा है, लोग जा रहे हैं मतदान करके निकल रहे हैं, बहुत से ऐसे दिख रहे हैं जो दफ्तर जाने की तैयारी में लगते हैं, बैग वैग टांगे हुए हैं, और कुछ लोग जो है वो भी बाकायदा तैयार होके आए, लग रहा है कि उनकी छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी वो आए हुए हैं, और यहाँ लंबी कतार लगी हुई है सड़क तक फैली हुई है बाहर निकल के, और लोगों में जोश दिख रहा है। मैंने कुछ लोगों से बात भी की लेकिन चूंकि भारतीय मूल के कुछ हिंदी में बोलने वाले नहीं मिले इसलिए मैं उसको उसकी आपको सुनवा नहीं सकता श्रोताओं को, लेकिन यहाँ पर बहुत जोश है, लोग कई ऐसे मिले जो पहली बार दे रहे हैं, कई नेपाली मूल के लोग हैं, यहाँ बांग्लादेशी मूल के लोग हैं, तो ये सब में खासा जोश दिख रहा है क्योंकि मैंने और चुनाव पहले कवर किए तो इस तरह का जोश मैंने नहीं देखा। अब ये आपको मालूम है कि न्यूयॉर्क एक डेमोक्रेटिक पार्टी का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पर जो वोटिंग है वो एक तरह से ये कह लें कि जो टोटल वोट है पॉपुलर वोट उसमें तो हिलरी क्लिंटन की जो है संख्या बढ़ेगी, लेकिन ये तो पहले ही माना जा रहा है कि उनको ये राज्य तो वैसे ही आराम से मिल जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद सलीम रिजवी आपका न्यूयॉर्क से। और आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं डेलावेयर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुक्तदर खां को। स्वागत है आपका दिन भर कार्यक्रम में प्रोफेसर साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी नज़र में क्या ये दोनों उम्मीदवार अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार थे, क्या इनसे बेहतर उम्मीदवार आ सकते थे?
जी हाँ, मतलब हमारे स्टेट के जो बाइडन काफी अहम थे, अगर वो अगर डेमोक्रेटिक नॉमिनेशन के लिए खड़े हो जाते तो वो हिलरी को आसानी से हरा देते, और पोल्स के मुताबिक उनमें और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत बड़ा मार्जिन होता। अगर आप प्राइमरीज खत्म होने से पहले के अगर पोलिंग देखते तो डोनाल्ड ट्रंप सबसे हार रहे थे, सिर्फ हिलरी क्लिंटन को वो हरा रहे थे। वो जो बाइडन से भी हार रहे थे तकरीबन 10-12 पॉइंट से, और बर्नी सैंडर्स से भी हार रहे थे, क्योंकि हिलरी के खिलाफ और काफी लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते और थोड़ा बहुत सेक्सिज्म का भी सवाल है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी के बीच में इतने करीब। लेकिन जो बाइडन ने चंद हफ्ते पहले ही, वो डेलावेयर काफी आते रहते, तो उन्होंने एक यहाँ के एक सेनेटर से कह रहे थे कि मेरा दिल टूट गया मेरा बेटे के इंतकाल के बाद से, इसलिए उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया।
ये जो दोनों प्रतिद्वंदियों हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप का जो पूरी इलेक्शनरिंग रही है, चुनाव प्रचार रहा है, आपकी नज़र में कैसा रहा? आप टोटैलिटी में उस पर किस तरह का कॉमेंट करेंगे?
दो चीज़ें हैं, एक तो एक के डिस्कशंस और डिबेट्स बहुत डिविसिव रहे हैं, रेस के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, जेंडर के ऊपर, और एक किस्म से ज़िनोफोबिया यानी जो इमिग्रेंट्स हैं और फॉरेनर्स के खिलाफ, ये इन सारे मसाइल पर एक किस्म से पंडोरा बॉक्सेस खोल दिए हैं, खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने, जो उनके जीतने या हारने से बंद नहीं होने वाले। तो ये अमेरिका की सोशल हार्मोनी के लिए आइंदा 10 साल तक मुझे लगता है कि इस इलेक्शन का असर रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक कमजोरियां हैं वो इस इलेक्शन में काफ़ी साफ जाहिर हो गए हैं। ये नहीं कि अमेरिका में लोग गरीब नहीं थे या अमेरिका में अंडर प्रिविलेज क्लासेस नहीं थे, लेकिन अब पहली बार मालूम हो रहा है कि जो वाइट कम्युनिटी है, जो सफेद लोग हैं, उनमें भी एक गरीब तबका, मार्जिनलाइज तबका आ गया है, जिसके वजह से इस इलेक्शन में इतना हीटेड। आपको याद होगा चंद साल पहले 2005 में शायद जब कैटरीना का जो हरिकेन का जो अटैक हुआ था न्यू ऑर्लीन्स में, तो जब लोगों को टेलीविजन पे अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी की गुर्बत और उनकी गरीबी नजर आई तो लोगों को दंग रह गए कि दुनिया के सबसे अमीर मुल्क में इतनी गरीबी कहाँ है। लेकिन इस इलेक्शन में पता चल रहा कि तकरीबन जो वाइट कम्युनिटी है उसका 1/3 यानी 30% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मतलब जॉबलेस या इकोनॉमिक फ्रिंजेस पे समझते हैं, और ये एक अमेरिका की सियासत पे परमानेंट असर रख कर सकेगा।
अच्छा ये बताइए, ट्रंप ने जिस तरह से एग्रेशन दिखाया, आक्रामक रुख दिखाया, आपको लगता है इससे नुकसान हुआ उनको?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ना तो पहले पॉलिटिकल करियर था, और अगर वो अगर हार जाते हैं तो उनके लिए तो एक किस्म से ये विन विन सिचुएशन है। अगर इस जारहाना अंदाज से उन्होंने कैंपेन लड़ी है, अगर उसके वजह से वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो खैर वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के, लेकिन वो अगर हार भी जाते हैं तो उन्होंने दो चीज़ें की हैं, अपना एक मूवमेंट बना लिया है जिसमें से आप कह सकते हैं कि सारे अमेरिका में एक 15-20% ऐसा कम्युनिटी सेगमेंट बना लिया, यानी 15-20 से तकरीबन 50-60 million ऐसे लोग हैं जो उनके से लॉयलिस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट। तो अफवाहें हैं कि अगर वो हार जाते हैं तो शायद वो ट्रंप टीवी शुरू कर देंगे या ट्रंप पार्टी बना देंगे, जिससे रिपब्लिकन पार्टी और फॉक्स न्यूज जैसे चैनल्स को बहुत धक्का लगेगा, लेकिन उनका एक किस्म से रियलिटी, मतलब जो उनकी जो जिंदगी है वो एक रियलिटी टीवी की तरह चल रही है, तो इलेक्शन के बाद भी फायदा ही होगा। بعض لوگوں نے غور نہیں کیا کہ الیکشن کے دوران بھی اس الیکشن سے بھی وہ فائدے اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہر ایونٹ ان کے ہی ہوٹل میں ہوتا ہے, ان کے ہی ایونٹ پلانرز وغیرہ, تو الیکشن کے جو خرچے وہ کر رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے ایک قسم سے پروفیٹیبل وینچر رہا ہے. تو الیکشن اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پریسیڈنٹ بن جائیں گے, ہار بھی جاتے ہیں تو ایک پولیٹیکل آئیکون بن کے رہ جائیں گے وہ امریکہ میں.
بہت بہت دھنیواد پروفیسر مقتدر خان آپ کا. یہ تو رہی وشلیشکوں کی بات, اور اب آئیے دیکھتے ہیں امریکی پریس میں اس چناؤ کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. نیو یارک سے سلیم رضوی.
آج امریکہ میں راشٹرپتی پد کے چناؤ کے دن ظاہر ہے امریکہ کے سبھی اخبار چناوی خبروں اور چرچاؤں سے اٹے پڑے ہیں. نیو یارک ٹائمز میں پہلے پنے پر سرخیوں میں یہ ہیڈ لائن ہے کہ لمبے اور تلخ چناوی پرچار کے بعد آخر اب ووٹروں کی رائے کی گھڑی آ گئی ہے. اخبار میں اس بات پر چرچا ہے کہ کیسے یہ چناؤ ڈیموکریٹک امیدوار ہلری کلنٹن اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ کانٹے کا مقابلہ ہے. اخبار کی مکھیہ خبر میں لکھا گیا ہے کہ ڈیموکریٹس نے اپنے کچھ اہم روایتی ووٹروں جیسے کامگار اور کم پڑھے لکھے گورے ووٹروں کو تو کافی حد تک کھو دیا ہے, اور اس کے بدلے میں یوواؤں اور پڑھے لکھے شویت لوگوں پر پکڑ مضبوط کی ہے. وہیں ٹرمپ کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کئی ایسے راجیوں میں جیت حاصل کر سکتے ہیں جہاں شویت کامگار طبقہ اور کم پڑھے لکھے شویت ادھک ہیں جیسے مشیگن, آئیوا اور اوہائیو. وہیں لاطینی مول کے امریکی ووٹروں کی ریکارڈ سنکھیا میں ووٹنگ کے لیے نکلنے کو بھی اخبار اہم مانتا ہے. بلکہ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ یہ سمودائے ایک سلیپنگ جائنٹ تھا, یعنی سوتا ہوا دانو جو اب جاگ گیا ہے, اور لاطینی امریکی ووٹروں کے بھرپور ووٹ پڑنے کے نتیجے میں فلوریڈا اور ایریزونا میں ہلری کلنٹن کو فائدہ ہونے کی بات بھی کہی گئی ہے. وہیں سماچار پتر واشنگٹن پوسٹ میں پہلے پنے پر ہیڈ لائن کے ساتھ یہ خبر لگی ہے کہ کئی پرانتوں میں متدان کے دوران افراتفری سے نپٹنے کی تیاری میں لگے ہیں پولنگ ادھیکاری. خبر میں کہا گیا ہے کہ پنسلوینیا اور ایریزونا میں خاص کر کہا گیا ہے کہ کئی ڈیموکریٹس نے یہ شکایتیں درج کرائی ہیں کہ ٹرمپ سمرتھک لوگ ووٹروں پر دباؤ بنا رہے ہیں. خبر میں اس بات کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ریپبلکن امیدوار دوارا کئی بار متدان میں کتھت گڑبڑی کے ڈر کے کارن ریپبلکن سمرتھکوں سے سچیت رہنے اور متدان پر نظر رکھنے کو بھی کہا جاتا رہا ہے. کئی راجیوں میں متدان سے جڑے ادھیکاریوں نے یہ نوٹس بھی جاری کی ہیں جن میں یاد دلایا گیا ہے کہ ووٹروں کو ڈرانے دھمکانے کی سزا 10 ورش کی ہے. کئی راجیوں میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس دونوں پارٹیوں نے اپنے وکیلوں کو متدان میں سمبھاوت گڑبڑی کے پیش نظر مقدمے دائر کرنے کے لیے تعینات کر رکھا ہے. وہیں لاس اینجلس ٹائمز میں ایک دلچسپ خبر لگائی گئی ہے کہ نوادا پرانت میں کچھ جگہ رہنے والے نیٹو امریکنز یا امریکہ کے مول نواسیوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے 270 میل تک کا سفر طے کرنا پڑتا ہے. نوادا کی نائے کاؤنٹی میں ڈک واٹر ششون ریزرویشن یا مول نواسیوں کے لیے آرکشت استھان میں رہنے والے مول نواسی امریکی لوگوں کی قریب میں متدان کیندر بنائے جانے کی گزارش ٹھکرائی گئی. اب ووٹ ڈالنے کے لیے ان ووٹروں کو کار سے آنے جانے میں 270 میل طے کرنا ہوتے ہیں. امریکی سماچار مادھیموں میں خاص کر ٹی وی پر جگہ جگہ ووٹنگ شروع ہونے کے درشیہ دکھائے جا رہے ہیں. لوگوں میں جوش دکھایا جا رہا ہے اور کئی جگہوں پر صبح سے ہی متدان کے لیے لمبی لائن دیکھی جا سکتی ہے. ٹی وی چینلوں پر چرچا اس بات پر بھی ہو رہی ہے کہ اہم سمجھی جانے والی پرانتوں جیسے فلوریڈا, پینسلوینیا, نارتھ کیرولائنا میں ڈیموکریٹس کے سمرتھن والے علاقوں میں ادھک ووٹر نکل رہے ہیں یا ریپبلکن پارٹی کے سمرتھک زیادہ نکل رہے ہیں, اور جیسے جیسے پولنگ کا دن ڈھلے گا تو کیا متدان میں اور تیزی آئے گی. سلیم رضوی, نیو یارک.
دن بھر شارٹ ویو 41, 31 اور 25 میٹر بینڈ یعنی 7,565, 7,600, 9,510, 11,995 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو 1,413 کلو ہرٹز پر.
امریکی راشٹرپتی چناؤ پر اگلے کارکرم گھٹنا چکر میں بھی چرچا جاری رہے گی. یہ بی بی سی ہے, آپ دن بھر سن رہے ہیں ریحان فضل کے ساتھ. شاید آپ نکی پردھان کو جانتے ہیں, وہ ایشیائی چیمپئنز ٹرافی میں چین کو ہرا کر خطاب پر قبضہ کرنے والی بھارتی مہیلا ہاکی ٹیم کا حصہ تھی. وہ اولمپک کھیلنے ریو بھی گئی تھی. ان دنوں ان کے گاؤں میں ان کے سنگاپور سے واپس لوٹنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس بیچ ان کے گاؤں کی لڑکیاں املی کے پیڑ کے نیچے ہاکی کی پریکٹس میں ویست ہیں. جھارکھنڈ کے کھونٹی ضلع میں استھت ان کے گاؤں کے ہر گھر کی لڑکی ہاکی کھیلتی ہے. لوگ ان کے گاؤں ہیسل کو مہیلا ہاکی کی نرسری کہتے ہیں. سنیے روی پرکاش کی خاص رپورٹ.
میں ہیسل میں ہوں. جھارکھنڈ کے نکسل پربھاوت کھونٹی ضلع کے مرہو پرکھنڈ کا یہ گاؤں خاص ہے. ये ओलंपियन निक्की प्रधान का गांव है। गांव के लोगों को इस बात की खबर है कि निक्की और उनकी टीम की दूसरी सदस्यों ने सिंगापुर में चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। साल 2004 के एशिया कप में गोल्ड जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रहीं पुष्पा प्रधान भी इसी गाँव की हैं। दरअसल इस गाँव की लड़कियों के लिए हॉकी सिर्फ एक खेल नहीं, इबादत है। आदिवासियों के इस गांव के हर घर की लड़कियां हॉकी खेलती हैं। उनके मन में निक्की प्रधान बनने का सपना है। गांव के कृष्णा मुंडू कहते हैं कि यहां की लड़कियों को स्लेट से पहले हॉकी स्टिक पकड़ाई जाती है। बाद में जब स्लेट हाथ में आती है तो वे क से कलम की जगह ह से हॉकी पढ़ती हैं। हॉकी उनके ककहरे में शामिल है।
हॉकी का रुझान तो जब पुष्पा प्रधान फर्स्ट टाइम आई थी ना, उसी के बाद से हॉकी का रुझान बहुत है लड़कियों में। यहाँ देखिएगा तो 3-4 बजे लड़कियाँ उठ के अपना चली जाती हैं मैदान में मॉर्निंग में दौड़ने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद तो स्कूल से खेल होता ही है। और निक्की प्रधान जब से आई है ओलंपिक में रियो में, नाम जब से हुआ तो और थोड़ा जोर शोर से बढ़ रहा है गेम। तो अभी तो हॉकी स्टिक आ गया, नहीं तो पहले हम लोग यहाँ में बाँस का बनता था, बाँस का उससे खेलते थे।
हम ओलंपियन निक्की प्रधान के घर पहुँचते हैं। इनके आंगन में इमली का विशाल पेड़ है। पिताजी झांसा गए हैं नौकरी करने। दोनों बहनें रांची की हॉकी अकादमी में ट्रेनिंग ले रही हैं। मेरी मुलाकात उनकी माँ जीतन देवी से होती है। वे इन दिनों अपने घर में अकेली रहती हैं। उन्हें गर्व है कि उनकी बेटी निक्की प्रधान को ओलंपिक खेलने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने बीबीसी से कहा,
शेख हाँ इसने छुआ खेलत रहे तब आगे और का करे, शेख के तो थोड़े जानत रहे, विदेश तो का एक बार जाए है, ओलंपिक में जाए रहे।
इस गांव की लड़कियों ने अभाव में हॉकी खेलना सीखा। अपने समय की मशहूर हॉकी खिलाड़ी पुष्पा प्रधान के पिता सोमरा प्रधान ने बीबीसी को बताया कि गरीबी के कारण उन्होंने मड़ुआ की रोटी और बासी भात खिलाकर पुष्पा प्रधान को पाला। उन्होंने बताया कि पिलोल स्कूल की मास्टर दशरथ महतो की बदौलत गांव की लड़कियों ने हॉकी सीखी। वहीं दशरथ महतो मानते हैं कि इन लड़कियों में अद्भुत प्रतिभा है। इन सब ने गरीबी देखी है, लिहाजा उनका कमिटमेंट लेवल ज्यादा है। दशरथ महतो ने कहा,
पहले जब हम खेलते थे ना उस समय हम इंटरनेशनल नहीं बन पाए। हम वही समय सोच लिए थे कि एक दिन हम मेरी लड़कियों को ही या लड़कों को इंटरनेशनल बनाएंगे, वो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य था।
निक्की प्रधान खुश हैं कि उनके गांव की लड़कियों में हॉकी को लेकर दीवानगी है। सबके हाथ में हॉकी स्टिक है और आंखों में भारत के लिए खेलने का सपना। कोई चांस मिस ना हो इसके लिए अधिकतर लड़कियों ने पहले से ही पासपोर्ट बनवा लिया है। गांव की दर्जन भर लड़कियां नेशनल तो करीब 2 दर्जन लड़कियों ने स्टेट लेवल की प्रतियोगिताओं में हॉकी खेली है। निक्की और पुष्पा प्रधान जैसी गांवी लड़कियों ने इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत का नाम रोशन किया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हिसल की कई और लड़कियां देश दुनिया में झारखंड और इस गाँव का नाम ऊँचा करेंगी। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए हिसल, खूंटी में।
झारखंड की महिला हॉकी नर्सरी के बारे में बता रहे थे रवि प्रकाश। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर लिखिएगा। खेल समाचारों में आपको बता दें कि कल राजकोट में भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। कुछ व्यवधान की आशंका थी कोर्ट की वजह से, लेकिन अब वो दूर हो गई है। दोनों देश 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेंगे। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क में मतदान किया है, जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मैनहट्टन में थोड़ी ही देर में वोट डालने वाले हैं। मंगलवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की 435 सीटों और सीनेट की 1/3 सीटों के लिए भी मतदान हो रहा है। साथ ही मतदाता 12 राज्यों के गवर्नर के चुनाव के लिए भी वोटिंग कर रहे हैं। जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में ढील के बाद ईरान ने पहला बड़ा ऊर्जा करार किया है। फ्रेंच कंपनी टोटल और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ईरान के साथ $5 अरब के करार पर सहमत हुए हैं, जिसके तहत खाड़ी क्षेत्र में समुद्र तट से दूर एक बड़े गैस फील्ड का विकास किया जाना है। जर्मन अभियोजकों का कहना है कि पुलिस ने ऐसे 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर इस्लामिक स्टेट समूह की मदद करने का संदेह है। ये लोग कथित रूप से इस्लामिक स्टेट के लिए सदस्यों की भर्ती कर रहे थे और वित्तीय मदद मुहैया करा रहे थे। महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी ने इस बात की पुष्टि की है कि अमरीकी अभिनेत्री मेघन मार्कल उनकी गर्लफ्रेंड हैं। उन्होंने अभिनेत्री मेघन के साथ मीडिया के बर्ताव की भर्त्सना की है। भारत की राजधानी दिल्ली अभी भी प्रदूषण की चादर से ढकी है। स्मॉग से निपटने के लिए प्रशासन ने पुरानी गाड़ियों का लाइसेंस रद्द करना शुरू किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अब से डेढ़ घंटे बाद आपसे फिर मुलाकात होगी घटना चक्र कार्यक्रम में। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।